ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम अध्याय 21, अरे स्कंद 8 अध्याय 21, श्लोक नंबर 1, 2, 3 और 4। तीन श्लोकों में तात्पर्य नहीं है, चौथा श्लोक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। धातु कमंडल जलं तदवरो क्रमस्य पादावने जनय पवित्रया नरेन्द्र। स्वधूर्ण्यभुन्नयं भस्सा पतति निवाष्टे लोकत्रयं भगवतो विषदेव कीर्तिः। धातु कमंडल जलो कमंडल जलं तद्रोक्रमस्य पादावने जनय पवित्रया नरेन्द्रः। स्वदुर्लभुन्नयं भुन्न भसिसा पतिति निमाष्टे लोकत्रयं भगवतो विषदेव कीर्तिः। धातु कमंडल जलं तदवर क्रमस्य पादावने जनय पवित्रया नरेन्द्रः। स्वधूर्यभुन्न भसिसा पतति निमाष्टे लोकत्रयं भगवतो विषदेव कीर्तिः। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। धातुः ब्रह्मा जी का कमंडल जलम कमंडल का पानी तत् वही उरुक्रमस्य भगवान विष्णु का पादवने जन पवित्रया भगवान विष्णु के चरण कमलों को धोने और इस तरह दिव्य रूप से पवित्र होने से नर इंद्रः। हे राजा स्वधूर्णे दिव्यलोक की स्वधूर्णी नामक नदी अभूत हो गई नभसे बाह्य आकाश में सा वह पतते नीचे गिरती है निर्माष्टे पवित्र करती है लोकत्रयम् तीनों लोकों को भगवतः भगवान के विशदा इतनी पवित्र कीर्ति इवा मानो कीर्ति है जस या यशस्वी कार्यकलाप। अनुवाद में पढ़ रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए कि हे राजा ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले उरुक्रम वामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे बहता हुआ तीनों लोकों को शुद्ध करने लगा मानो भगवान का विमल यश हो। हरे कृष्ण। तो हम लोग इस अष्टम स्कंद के लगभग अंतिम स्कंद के अंदर ही प्रवेश किए हैं अध्याय के अंदर, और हम लोग सुनते आ रहे हैं क्रम से बलि महाराज के प्रसंग को और वामन देव वामन भगवान के प्रसंग को। यह बलि महाराज का जो प्रसंग है और वामन देव जी का, यह आठ अध्याय में वर्णन है इस आठ स्कंद के अंदर। आठवें स्कंद में आठ अध्याय में बलि और वामन भगवान के क्रमों का वर्णन है, कीर्ति का वर्णन है। तो हम लोग अभी करीब करीब छठे अध्याय के, मतलब आठ अध्याय में जो छठा अध्याय है, अभी 22 और 23 दो अध्याय इस स्कंद में और बाकी हैं। तो हम लोग उस क्रम में चलते हुए इन आठ अध्याय में वर्णन क्रम के अंदर हम लोग छठे अध्याय में प्रवेश किए हैं, जो भगवान वामन देव की कृति का वर्णन किया जा रहा है। और खास करके आज के श्लोक के अंदर प्रभुपाद जी पहले हर अध्याय के पहले अध्याय का सारांश लिखते हैं कि इस अध्याय के अंदर क्या वर्णन हुआ है संकेत रूप में। तो मैं पहले प्रभुपाद जी के वाणी को पढ़ता हूँ, उसके बाद एक दो और तीन श्लोक के अनुवाद को पढ़ूंगा, उसके बाद चौथे श्लोक के ऊपर कुछ हम मतलब सुनाने का प्रयास करूंगा। इस अध्याय का नाम है भगवान द्वारा बलि महाराज का बांधा जाना। ये प्रश्न आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा जरूर कि इतना देने के बाद भी भगवान ने वामन देव को, अरे बलि महाराज को बांधा क्यों? क्लास समापन होते समय पूछा जा सकता है, क्योंकि सुनने का फलश्रुति ही यही होता है कि कुछ अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार की शंका हो तो उसको निपटारा कर लेना चाहिए। अब बताइए, इतना सब कुछ देने के बाद वो भगवान को कितना निर्दयी कहा जा सकता है जो अपने भक्त को बांध दिए? कोई पूछ सकता है ना कि सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी भगवान ने वामन अरे बलि महाराज को बांधा क्यों? पहले हम लोग इस पे चर्चा करते हैं श्लोक के ऊपर, उसके बाद श्री श्री राधा राधिका रमन जी की। इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान विष्णु ने किस प्रकार बलि महाराज के जस का विज्ञापन करने की इच्छा से तीसरे पग के लिए अपना वचन न निभाने के कारण बलि महाराज को बंदी बना दिया। प्रभुपाद ने तो उत्तर दे दिया कि तीसरे पग पूरा न होने के कारण बलि महाराज को बंदी बना लिया। जब भगवान का दूसरा पग ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक तक जा पहुंचा तो उनके अंगूठे के नाखून से तेज से उस लोक का सौंदर्य घट गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मरीचि आदि ऋषियों तथा स्वर्ग के प्रधान देवों समेत भगवान की स्तुति और पूजा की। उन्होंने भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और सारी सामग्री से उनका पूजन किया। ऋक्षराज जामवन ने भगवान की महिमा को गुंजाने के लिए अपना बिगुल बजाया। जब बलि महाराज का सर्वस्व छीन गया तो सारे असुर अत्यंत क्रोध हुए। बलि महाराज के रोकने पर भी उन सबों ने भगवान विष्णु के विरुद्ध अपने हथियार उठा लिए, किंतु विष्णु के नित्य पार्षदों ने इन सबको हरा दिया और वे सब बलि महाराज के आदेशानुसार पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु के वाहन गरों ने भगवान विष्णु का मंतव्य समझकर तुरंत ही बलि महाराज को वरुण के पास से बंदी बना लिया। जब बलि महाराज इस असहाय अवस्था में थे तो भगवान विष्णु ने उनसे तीसरे पग की भूमि मांगी। जब बलि महाराज अपना वचन पूरा न कर पाए तो भगवान विष्णु ने उनके संकल्प तथा दृढ़ व्रत को देखते हुए उन्हें सूतल लोक में स्थान प्रदान किया, जो स्वर्ग लोक से बढ़ कर के है। अगर भगवान किसी को ताड़ना भी करते हैं तो ऐसा स्थान देते हैं कि जो इस संसार की तो छोड़ दीजिए, उच्चतर लोकों के स्थानों से भी वह महत्वपूर्ण होता है। बलि महाराज को भगवान ने सुत्तल लोक भेजा, लेकिन वह उसकी विशेषता प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि वह स्वर्ग लोक से भी बढ़कर के था। तो मैं श्लोक 1, 2, 3 का तात्पर्य अनुवाद पढ़ता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि जब कमल पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने देखा कि उनके धाम ब्रह्मलोक का तेज भगवान वामन के अंगूठे के नाखूनों के चमकीले तेज से कम हो गया है, तो वे भगवान के पास गए। ब्रह्मा जी के साथ मरीचि आदि ऋषि तथा सनंदन जैसे योगी जन थे, किंतु हे राजा, उस तेज के समक्ष ब्रह्मा तथा उनके पार्षद भी नगण्य प्रतीत हो रहे थे। इस श्लोक के अंदर भगवान के एक अंग के एक नाखून की विशेषता बताई जा रही है कि उसके अंदर इतनी प्रज्वलित प्रकाश थे कि ब्रह्मलोक का भी प्रकाश और अन्य ऋषि मुनियों के भी लोकों का जो या उनके शरीर का जो तेज था सब का सब फीका पड़ गया। इससे यह अनुभूति किया जा सकता है कि भगवान कितने तेज पुंज का भंडार है। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कहते हैं कि हे राजा, भगवान के जैसे ही नख का प्रकाश निकला कि सारे देवी देवताओं और उनके लोगों का जो प्रकाश पुंज था वो फीका पड़ गया। यह परोक्ष रूप में भगवत गुणानुवाद किया जा रहा है। भगवान के एक अंग के एक कांति की विशेषता का वर्णन किया जा रहा है। अब कौन कौन लोग उनके इस कांति का वर्णन और विशेष रूप से करते हैं उसके विषय में दूसरे और तीसरे श्लोक में बताया गया कि जो महापुरुष, वास्तव में श्लोक जो लिखा हुआ है ना, श्लोक को गाने में जो आनंद है, एक एक शब्द का रस निकल आता है अगर अस्पष्ट श्लोक को गाया जाए तो। उन महापुरुष भगवान के चरण कमलों की पूजा के लिए आए, उनमें वे भी थे जिन्होंने आत्मसंयम तथा विधि विधानों में सिद्धि प्राप्त की थी। साथ ही वे तर्क, इतिहास, सामान्य शिक्षा तथा कल्प नामक वैदिक वाङ्मय में दक्ष थे। अन्य लोग ब्रह्म संहिताओं जैसे वैदिक उपनिषदों, वेदों के अन्य ज्ञान तथा वेदांगों, आयुर्वेद, धनुर्वेद आदि में पटु थे। उनमें से कुछ ऐसे थे जिन्होंने योगाभास से जागृत दिव्य ज्ञान के द्वारा कर्म फलों से अपने को मुक्त कर लिया था। भगवान के धाम में या उच्च स्तर के लोकों में कौन कौन से लोग रहते हैं, क्या योग्यता होती है, उसका वर्णन इन श्लोकों के अंदर बताया जा रहा है। कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सामान्य कर्म से ही नहीं प्रत्युत ऊंच वैदिक ज्ञान द्वारा ब्रह्मलोक में निवास स्थान प्राप्त किया था। ऐसे किसी को इतना ऊंचा स्थान या ऊंचे लोक की प्राप्ति नहीं होती। इन सारी योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद तब ऊपर के लोकों में निवास मिलता है। जल तर्पण द्वारा भगवान के ऊपर उठे चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा कर लेने के बाद भगवान विष्णु की नाभि से निकले कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। खग जाने खगई की भाषा, जो भगवान के पास में रहते हैं, जो भगवान ने जिनको अपना निमित्त बना करके कुछ विभाग उनको सौंपा है, वही व्यक्ति अपने राजा की या अपने मुख्य निर्माता के विषय में वो ठीक रूप से बता सकता है। अब ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं इस चौथे श्लोक के अंदर। इससे यह स्पष्ट झलकता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है भगवान के चरणों में प्रार्थना निवेदन करना। क्योंकि जब तक हम लोग स्तुति, वंदना, प्रार्थना भगवान के चरणों में नहीं करते हैं, जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जाप करते हैं, यह भी क्या है, यह सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। क्योंकि बिना विनित प्रार्थना किए हुए हम भगवान के नजदीक नहीं जा सकते। गिड़गिड़ाना पड़ता है, रोना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है। संसार के लोगों को तो यह अनुभूति प्रतिदिन होती है कि अपने बॉस के सामने, अपने घर में, अपने परिवार वालों के सामने प्रतिदिन झुकते। आज का जो श्लोक बोर्ड पर लिखा हुआ है उसका अनुवाद मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। कि हे राजा, ब्रह्मा के कमंडल से निकला जल अद्भुत कार्यों को करने वाले उरुक्रम बामन देव के चरण कमलों को धोने लगा। इस प्रकार यह जल इतना शुद्ध हो गया कि यह गंगा जल में परिणत होकर आकाश से नीचे उतरता हुआ तीनों लोगों को शुद्ध करने लगा, मानो भगवान का वह विमल यश हो। तात्पर्य यहाँ हमें पता चलता है कि जब ब्रह्मा जी के कमंडल के जल से भगवान बामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी। ध्यान से सुनिएगा कि कमंडल के जल से भगवान के बामन देव के चरण कमल धुले तो गंगा जी बहने लगी, किंतु पंचम स्कंद में पढ़ लीजिएगा, मैं बताऊंगा कि कहाँ आए। पंचम स्कंद में कहा गया है कि जब बामन देव का बाया पांव ब्रह्मांड के आवरण में घुस गया तो उससे होकर कारणाणव सागर का दिव्य जल निकलने लगा। अन्यत्र यह भी बताया गया है कि भगवान नारायण गंगा जल के रूप में गंगा जल के रूप में प्रकट हुए। अतएव गंगा का जल तीनों दिव्य जलों का मेल है और इस तरह गंगा तीनों लोकों को शुद्ध करने में समर्थ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने यह विवरण किया है। अब इस श्लोक के संदर्भ में समझने का हम प्रयास करें कि ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। क्यों स्तुति कर रहे हैं? कि उनके चरणों से निकले हुए अगर पंचम स्कंद के 17वें अध्याय में अगर पढ़ेंगे तो पहले श्लोक के अंदर ही गंगा के जल की महिमा बताई गई और वहां लिखा गया है कि जैसे ही भगवान ने बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए और अपना कदम को बढ़ाया मापने के लिए तो उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से, बाएं पैर के अंगूठे के नख से जब लगा तो उस शब्द के लिए कि ब्रह्मांड कटा, ब्रह्मांड कटा है अर्थात ब्रह्मांड का जो आवरण है वह फट गया और वहां से जल निकलने लगा। और जब ऊपर से जल गिर रहा है, जब अंगूठा है भगवान के चरणों का ऐसे है तो जल गिरते हुए नीचे आया, तो भगवान के अंगूठे से फटे हुए जल और भगवान का ही अभिसिंचन करते हुए वह गंगा का जल जब इस जगत में आया तो उसको भगवत पदी नाम पड़ा, क्योंकि भगवान के चरणों को धोती ही वह नीचे आई। भगवत पादी भी कहते हैं जो भगवान के पैर से निकली। और उसी श्लोक के अनुवाद में दूसरा शब्द गंगा जी का दूसरा नाम दिया गया है कि उनको विष्णुपाद कहा जाता है, क्योंकि वो विष्णु, भगवान विष्णु के चरण कमल से निकले हुए हैं। और यहाँ जो प्रभुपाद जी कारणाणव जल लिख रहे हैं तो इसके संदर्भ में मैं आज वृंदावन में, वृंदावन चंद्र प्रभु को मैं सुबह फोन किया था, जो भागवत सप्ताह वगैरह करते रहते हैं। मैं इस उनसे पूछा कि प्रभु जी इसमें प्रभुपाद जी यह लिख रहे हैं कि कारणाणव जल यह प्रकट हुआ तो कहाँ तक सत्य है? तो प्रभुपाद उन्होंने बताया कि मैं इसके संदर्भ में कन्फर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जैसे लिखा है प्रभुपाद जी ने कि साक्षात नारायण ही गंगा जल में के रूप में प्रकट हुए, तो यह मैं पढ़ा हूँ कि जो जिससे हम लोग, हम जो गर्भोदक से विष्णु हैं वो गर्भ समुद्र में सोए हुए हैं और उनके ही, उन्होंने ही उसी स्वरूप में अपने जल रूप में परिणत कर दिया। इस स्वरूप में उन्होंने लिखा है कि यह जो नारायण ही थे उन्होंने जल के रूप में प्रकट हुए। लेकिन प्रभुपाद जी कहाँ से लिखे हैं बता रहे थे कि इसको देखना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा, या विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जब के टीका का यहाँ संकेत किया गया है, तो उस टीका से स्पष्टीकरण किया जा सकता है कि प्रभुपाद जी ने कहाँ से लिखे हैं। इन सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत ही पढ़ने की ज़रूरत है। हम लोगों को अगर अधिक से अधिक 30-35 मिनट या 40 मिनट बोलने का समय मिलता है भागवत कथा के अंदर सुबह सुबह, लेकिन 30-35 मिनट बोलने के लिए कितनी तैयारी करना होता है। जिनको 2-4 घंटे का भागवत या 7-7 दिन का भागवत सप्ताह करना होता है, तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि कितना पढ़ते होंगे और कितनी तैयारियां करनी पड़ती होगी। हम लोग आधे घंटे के लिए आते हैं, सुनते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़े विद्वान बन गए। पूरा जीवन पर्यंत अगर हम लोग इसमें लगे रहेंगे तो शायद कुछ न कुछ अंशानुवंश हम ग्रहण कर पाए। यह भी भगवत कृपा पर निर्भर करती है, भगवान के ऊपर निर्भर करती है कि कब और कहाँ और कैसे इसको देना है। यह सारी बात उनकी कृपा पर निर्भर करती है। इसलिए इन सब श्लोकों का रसास्वादन करने के लिए आचार्यों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। सबसे सर्वोपरि भगवान है। भगवान के विषय में बताने वाले को गुरु कहा जाता है, और गुरु भगवान के वाक्यों को धारण करके जब दूसरों को बताता है तो उसको साधु कहा जाता है, जो उस ज्ञान को लेता है, सुनता है। और जहाँ से ये सब निकला, जिसके विषय में विशद वर्णन किया जा रहा है, उसको शास्त्र कहा जाता है। एक क्रम में रखे गए हैं, क्रमवाइज। सर्वोपरि भगवान है, और भगवान के बाद जो भगवान का विस्तार करने वाला है वह है गुरु। बिना इन आचार्यों के ज्ञान के बिना हम इन ज्ञानों को अपने जीवन में कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसी प्रसंग में लीजिए तो इसी स्कंद के 15वें अध्याय में देवगुरु बृहस्पति जी बलि महाराज से कहते हैं, नहीं इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, इस समय जो तुम लोगों को स्वर्ग से भगा दिया है असुरों ने, इस समय वो अपने गुरु महाराज को शुक्राचार्य जी जैसे पवित्र ब्राह्मणों को उन लोगों ने खुश कर लिया है, जिसके कारण उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई है। ऐसा विप्र बलोदर का संप्रत्युजित विक्रम, कि केवल ब्राह्मणों के सेवा को सेवा करके वो इतना संतुष्ट कर दिए हैं कि इनका जो शक्ति है वो बढ़ गया है। तो इससे जाहिर किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि अगर हम ब्राह्मण और गुरु की सेवा अगर करते हैं तो सारी शक्ति को हम प्राप्त कर लेते हैं। और इन दोनों के साथ के बिना भगवान भी अपने को अधूरापन का महसूस ही करते हैं। अगर इन सब चीज़ों को अगर देखना है तो भागवत को खोल करके पढ़ सकते हैं। दसम स्कंद के 80 अध्याय के अंदर एक श्लोक में भगवान ने कहा है कि मैं अपने भक्तों के बिना खुद ही अपने को पूर्ण महसूस नहीं करता, क्योंकि उनको चाहिए। भक्तों की संगति के बिना भगवान को भी अकेलापन की अनुभूति होता है। खेल खेल में काको गोसाई एक लिखे हैं, क्या बोलते हैं पद्यावली में, कि ग्वाल वाल भगवान को अपने खेल से धक्का मार करके निकाल देते हैं कि नहीं, अगर चोर बनना है तो खेलो, अगर चोर नहीं बनना है तो तुम कितने भी बड़े राजा के बेटे हो की काउट बाहर जाओ। इन सब बातों से अनुभूति होता है कि भगवान अपने भक्तों के बिना अपने को भी पूर्ण रूप में अनुभूति नहीं करते, जबकि वो परिपूर्ण उनको कहा गया है, किसी की भी आवश्यकता नहीं है उनको। इसलिए इस स्कंद के अंदर पहले ही संकेत किया गया है पंद्रहवें अध्याय से ही शुरू होता है बलि महाराज और बामन देव का प्रसंग। और शुरू में सावधान भी कर दिया गया है कि गुरु और ब्राह्मणों के प्रति किसी भी प्रकार की दुर्भावना नहीं होनी चाहिए। सावधान कर दिया गया है। इस श्लोक के अंदर भी ब्रह्मा जी भगवान के चरणों के स्पर्श मात्र से केवल गंगा के जल को कितना पवित्रता की अनुभूति पूर्वक यहाँ स्तुति किए हैं। जो हम लोग चरणोदक डेली ही हम लोग ग्रहण करते हैं, हम लोग गंगा जल, अरे पानी के अंदर तुलसी पत्ता डाल करके गंगा जल बनाते हैं और उससे भगवान को स्नान कराते हैं, और वही चरणोदक फिर चरणावृत के रूप में हम लोग लेते हैं। हम लोग जो मंत्र पढ़ते हैं चरणावृत पान करने का, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, सर्वव्याधि विनाशनम नहीं बल्कि राधा कृष्ण पादोदकम प्रेमा भक्ति इदम मुदा भक्ति भरेण वै पीत्वा शीर्षाधारयामि। हम राधा कृष्ण के प्रेम की आकांक्षा से, उनकी प्रेम प्राप्ति के लिए हम उनके चरणोदक को ग्रहण करते हैं कि भगवान आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़े। मरना तो नितांत आवश्यक है, वो तो डेट फिक्स है, लेकिन किसको याद करते हुए, क्या याद करते हुए मरे वो महत्वपूर्ण है। इस श्लोक के अंदर केवल भगवान के चरणों का और गंगा का और इनकी स्तुति जो करते हैं भक्तों का, तीन लोगों का संकेत किया गया है कि कौन कौन से भक्त उनके धाम में प्रवेश करते हैं, उनकी मनोकामना किस प्रकार की होती है और वो किस प्रकार वो भगवान की स्तुति करते हैं। तो स्तुति किस लिए करते हैं कि इतनी पवित्रता है कि जो किसी भी प्रकार की किसी भी चीज को, अर्थात भगवान को ही देने में समर्थ है, ऐसे जल की विशेषता यहाँ बताई गई है, भगवान के चरणोदक का, गंगा जल का। अब कोई समझ सकता है कि कितनी भुवन पावन श्रीमती गंगा जी हैं जिनका वर्णन भागवत के कई जगह, भागवत के अंदर वर्णन किया गया। इसी स्कंद के 22वें अध्याय में अगर प्रवेश करते हैं तो एक श्लोक के अंदर बताया गया है, भागवत का 11 स्कंद 19 अध्याय और श्लोक नंबर 9 के अंदर गंगा जी के महिमा का वर्णन बताया गया है कि भगवान के चरण कितना पवित्र है, इसके विषय में बताया गया है कि ताप तृण अभितस्य घोरे संतप्तस्य मानस्य भवा ध्वनिसह पश्यामि नान्य चरणं तवांग्रे द्वंद्वा पदत्राप मृताभिवार्षतः। कि अगर संसार में जो जीव इस ताप त्रय में जल रहा है उसको कहाँ शांति मिलेगी और क्या करने से शांति मिलेगी, इस बात का 11वें स्कंद के अंदर उद्धव जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं इस श्लोक को, कि ताप त्रयोड़ा अभितहस्य, जो तीनों ताप रूपी अग्नि में जो जल रहा है, घोरे मतलब भयंकर, इस तीनों ताप के अंदर जो जल रहा है, संतप्तस्य मानस्य भवानधीशः, हे प्रभु इस संसार में जलते हुए, तीनों गुणों में जलते हुए व्यक्ति के लिए कहाँ शांति मिलती है और क्या करने से शांति मिलती है। तो उद्धव जी कहते हैं कि पश्यामि नान्य अन्य शरणम, जो व्यक्ति केवल आपके चरणों का शरण छोड़ करके अन्य का शरण ग्रहण करता है, तो ये त्राप त्रय जो है, तीनों जो ताप है उसको खूब जलाते हैं, लेकिन अन्य का शरण न लेकर के केवल आपका शरण लेता है तो उस व्यक्ति को ये ताप त्रय जो अग्नि है उसको नहीं जला पाती। और मोहर लगाते हैं, उद्धव जी इस श्लोक के ऊपर कहते हैं कि त्वद अंग्री द्वंद पाद तप पाद पत्रा मृता अभिवर्षा, जैसे कहीं आग लगी हो तो आग को बुझाने के लिए प्रचुर मात्रा में जल की जरूरत है, वर्षा की जरूरत है, वैसे ही इस संसार में तीनों ताप से जलती हुई मतलब अग्नि को बुझाने के लिए त्वंग्री पद पाद में आपके चरणों के कृपा की वर्षा रूपी जल से ही ये तीनों ताप बुझ सकता है। आप देखो कितना आसान है लेकिन कितना हम लोग दूर हैं। नित्य केवल भगवान के चरणों में प्रार्थना को निवेदन करना है। उद्धव जी साफ शब्द में कह रहे हैं कि अगर जो ही संसार में संतप्त है, जल रहा है, मर रहा है, उसके लिए केवल एक ही औषधि है उस आग को बुझाने के लिए कि भगवान के चरणों में नित्य प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रार्थनाएं करता रहे। लेकिन ये अनुभव ही नहीं होता है कि हम आग में जल रहे हैं। पता ही नहीं चलता हम कहाँ जल रहे हैं। लेकिन जो प्रखर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं वो अनुभूति करते हैं कि हम जल रहे हैं। कभी कभी वो इस फसावट में आते हैं और अपने को साधुओं की संगति में ले जाकर के इस जलती हुई जो ताप त्रय है उसके संगति से इस जली हुई अग्नि को ठंडा करते हैं। एक श्लोक के अंदर और बताया गया है कि हम लोग भगवान से विमुख होकर के कहाँ कहाँ फंस करके हम अपने आयु व्यय करते हैं। देखिए यह सबके ऊपर लागू होता है। हम लोग चाहे किसी भी वर्ण और आश्रम में हो लेकिन सबका टारगेट एक है, संशुद्धि हरि संसिद्धि हरि तोषण। लेकिन कहाँ कहाँ फंसे हुए हैं बताया गया है इसी अध्याय के अंदर, इसी अष्टम स्कंद के ही 22वें अध्याय के अंदर बताया गया है। श्लोक में अपनी स्थिति को अपनी अपनी हम लोगों को औकात के विषय में पता होनी चाहिए कि हम लोग कितने पाने में हैं। बहुत बड़ा अहंकार पाल पाल करके रखते हैं हम लोग कि नहीं हम बहुत भक्ति करते हैं, हम इस संसार से बहुत आसानी से पार हो जाएंगे। तो इसी स्कंद के 22वें अध्याय के एक श्लोक में ये बलि महाराज की ही उक्ति है। बलि महाराज जी कहते हैं कि कीमात्मनाने न जहाति यो अंततः किम रक्तहारय स्वजनाख दस्यु भी किम जायया संस्कृति हेतु भूतया मर्तस्य गेहे कि विहायुषो व्ययः। किम आत्मनाने न, किम मतलब क्यों, क्या इस शरीर से क्या मतलब है जब यह एक दिन छूट जाएगा। आप सोचिए कि इस शरीर को पुष्ट करने के लिए, इस शरीर को पालने के लिए कितनी गलतियां करते हैं। सारा गलती का भंडार अगर देखा जाए तो यह शरीर है। इसी को पालने के लिए, इसी को सजाने के लिए सारी गलती की जाती है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि इसी शरीर से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। केवल अपनी दिशा परिवर्तन करना है, कि वह आत्मनाने ना, जो अपने आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं वो इसी में अहम ममेति मैं और मेरा और इस शरीर के संस्कृति अर्थात इस शरीर से उत्पन्न हुए लोगों में संबंधियों में अपना समय अव्यय करते हैं। जहाति शब्द का अर्थ त्याग देना है। किम रक्त हारे, जब एक दिन यह शरीर ही छोड़ देना है तो इस शरीर से हम कोई ऐसा कार्य कर क्यों न कर लें जिससे हम इस लोक से परे लोक में भी सुख और शांति की अनुभूति करें। हम न छोड़ना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता है, लेकिन आत्मा एक दिन इस शरीर को छोड़ देता है। आप सोचिए कि जीने के लिए कितना लौहार की धौकनी की तरह जबरदस्ती हम जी रहे हैं, नाकों में नाली लगा करके ऊपर से श्वास लेकर के कैसे कैसे हम जीने का प्रयास कर रहे हैं, जबरदस्ती। लेकिन इस प्रकार के जीना है तो किस लिए जीना है? संसेवया कृष्ण पाद पद में केवल कृष्ण की सेवा, कृष्ण के चरणों की सेवा के लिए जीने की इच्छा रखो, अन्यथा मरना इसे अच्छा। जिएंगे तो इस शरीर से हम कुछ गलतियां करेंगे, अगर सही करने की इच्छा रखो तो जीने की इच्छा रखो। किम रक्त हारे सुजना की दस्यो, जिसको हम अपना शरीर गंवा करके इकट्ठा करते हैं, रक्त हारे मतलब धन, जिस धन के लिए हम अपना अंग भी कटवा देते हैं, मतलब आत्मसमर्पण कर जाते हैं मरने के लिए, लेकिन बदले में हमें धन मिले, इस धन से भी क्या स्वार्थ। जो हमें इस संसार में लिप्त करते जाता है, भगवान से विमुख करते जाता है, वैसे धन की सदुपयोगिता है जिस धन से भगवान की कुछ सेवा की जा सकती है। और धन किसके लिए कमाते हैं तो रक्त हारे के आगे सुजना के दस्य शब्द लगा है। प्रहलाद महाराज जो इनके बलि महाराज के पूर्वज हैं, उन्होंने ये शब्द नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए इन्होंने भी ये शब्द कहा है सुजनाक दस्यु, और बलि महाराज भी इस शब्द को दोहरा रहे हैं कि हम लोग धन इकट्ठा किसके लिए करते हैं, कि अपने स्वजन के रूप में आए हुए संबंधियों को खुश करने के लिए। लेकिन बलि महाराज और प्रहलाद महाराज के शब्दों में यह जो हमारे स्वजन और संबंधी है क्या है, दस्यु मतलब डाकू, चोर है। चोर तो चोरी करता है रात को सोने के बाद, नहीं रहने के बाद, लेकिन ये स्वजन रूपी डाकू ऐसे है जो सामने स्वेच्छा से चाबी दे दी जाती है, ले जाओ। अब बताइए इस धन को इकट्ठा करने से क्या तात्पर्य, इन स्वजन को अपना बनाए रखने से क्या फायदा जो हमें भगवान से विमुख करते हैं। अब देखिए, स्वजन या संबंधी के अंदर पत्नी आ गई, लेकिन बलि महाराज अलग से कह रहे हैं किम जायया संस्कृति हेतु भूतया, उस पत्नी से भी क्या आशय है जो संस्कृति हेतु भूतया, जो इस संसार में फंसाने वाली है। संस्कृति शब्द का अर्थ यह है कि जो परिवार, घर परिवार में जो छिपके हुए लोग हैं वह संस्कृति मतलब इस जन्म मृत्यु संसार सागर से जल्दी उनका उद्धार नहीं होता, इस जगत में फंसाने वाली है। लेकिन यह सिद्धांत आप लोगों के ऊपर लागू नहीं होगा, ध्यान रखना। क्योंकि नित्य प्रतिदिन कुछ समय निकालते हैं भगवान के लिए, लेकिन इसको बढ़ाने की जरूरत है। इस संस्कृत हेतु भूतया से हम लोग निकलने के लिए आए इस मनुष्य शरीर में। अगर इसी को सर्वश्रेष्ठ मान करके केवल हम भगवान से विमुख हो जाते हैं, तो वैसे व्यक्ति पर यह सिद्धांत पक्का रूप से लागू होता है। और मर्तस्य गेहि, जब यह हमें मरना ही है तो इस शरीर से बनाए हुए इतने बड़े घरों की क्या मतलब तात्पर्य है कि इस घर को बनाने में हमने सारा अपने जीवन की कमाई लगा दिया, और जब उस घर में रहना हुआ तो हम चल बसे। कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में इकट्ठा कर रहे हैं उससे कोई तात्पर्य नहीं, कोई अर्थ नहीं निकलता। यह क्या है तो बलि महाराज कहते हैं कि किमि आयुषो व्यय, क्यों हम अपने आयु के व्यय करें, खर्च करें। जितना दिन जीना है तो हम भगवान की संसिद्धि के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए क्यों न जिए, हम उनको खुश करने के लिए हम क्यों न प्रयास करें। यह सारा सिद्धांत, यह सारा नियम मनुष्य के ऊपर लागू होता है। और जितने भी वेद शास्त्र और जितने भी ग्रंथ बनाए गए हैं केवल मनुष्यों के लिए, क्योंकि सबसे बिगड़ा हुआ जीव मनुष्य है। सत्य यह सिद्धांत सब अपने अपने ऊपर लागू करके देख सकते हैं, अनुभूति कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक इसके विपरीत सोचते हैं कि हमारे जैसा अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है, बाकी संसार तो बिल्कुल बेकार है। इन्हीं सब चीजों को सुधारने के लिए ये सारे दिव्य ग्रंथ हैं। और यह नहीं कि पढ़ा और सुना बस वहीं का वह, अधिक से अधिक हम लोगों का अथक प्रयास यह करना चाहिए कि कितना परसेंटेज हम इसको अपने जीवन में उतार रहे हैं। क्योंकि यहाँ स्पष्ट लिखा गया है कि बलि महाराज का प्रसंग चल रहा है कि जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया भगवान से। बलि महाराज ने तर्क किया वामन देव से कि आपने ही गीता में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का ज्ञान दिए हैं, दो कदम में चलो आपने सारा कुछ माप लिया, लेकिन यह शरीर भी क्षेत्र कहा गया है, खेत कहा गया है, अब यह तीसरा पद रखने के लिए हमारा शरीर बाकी है, इस शरीर को आप माप लीजिए। और भगवान ने अपना पैर बलि महाराज के सर पर रखा। आप सोचिए, छोटे व्यक्ति हैं, महाजन है, जिस चरण की कृपा लेने के लिए, जिस चरण धूलि की कृपा लेने के लिए ऋषि मुनि लोग अपने जीवन गंवा बैठते हैं, बलिदान दे देते हैं, कितने उच्च त्याग है। और हम लोगों के जीवन में उतारने लायक यह चीज है कि जितना त्याग से खुश मिलता है, खुशी मिलती है, उतना भोग से खुशी नहीं मिलता। एक साधु ने एक जगह लिखा है, उदाहरण दिया है कि जैसे अगर किसी को बहुत जोर से अगर प्रेशर लगा हो तो उसको बाथरूम जाने के बाद वो अगर वापस आ जाता है तो उससे पूछिए कि शांति कहाँ है, क्या त्यागने के बाद शांति है, वो कहेगा भैया अब तक तो मर गया होता। मतलब एक छोटी सी तुच्छ वस्तु का त्याग करने से इस इतने सुख की अनुभूति होती है। तो अगर हम बड़ी चीज त्याग करते हैं, यह जीवन हम भगवान के लिए त्याग करते हैं, अगर इस जीवन का अधिक समय भगवान के सेवा में लगाते हैं, तो ये समझिए कि कितना बड़ा कृपा मिलने वाला है। इस अध्याय का सारांश ही है कि बिना त्यागे कुछ मिलने वाला नहीं, बस आने दो आने दो आने देने से कुछ मिलने वाला नहीं है। इस आयु की मतलब सार्थकता इसी में है कि जितना अधिक से अधिक समय भक्ति परायण स्थिति में बीते वही इस जीवन की सार्थकता है। बोलने का और मन कर रहा है लेकिन टाइम तो अपने स्तर से अपने स्पीड से चल रहा है, लेकिन इतना तो जरूर हम लोग सुन लें, ध्यान से सुन लें, अपने कानों के अंदर डाल लें कि जितना हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं उससे क्या मिला अभी तक, अपने अपने जीवन से सब लोग तुलना कर लीजिए कि अभी हमने पाया क्या। अब इससे कुछ और चीज पाने का प्रयास कीजिए। अभी तक तो कुछ मिला नहीं, सब कुछ दे दिया, बचपन से जवानी तक दे दिया, बुढ़ापा भी दे रहा हूं, लेकिन अभी तक मिला क्या? कृष्ण की कृपा के आशा में अपने गले में माला लटकाए हुए, भगवान के रूपों को अपने आंखों में बिठाए हुए, भगवान के लीला धाम को अपने हृदय में बैठाए हुए, अगर उनका चिंतन, उनका मनन, उनका वंदना अगर हम करेंगे तो कुछ मिल जाएगा। अन्यथा जितना भी हमने जो आज तक किया उससे कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं मिला। सारांश यही है साधुओं कि नित्य प्रतिदिन गुरु के चरणों में अपनी वंदना करते हुए भगवान से प्रार्थना करके, भगवान मुझसे पतित, मुझसे पापमय जीवन व्यतीत करने वाला और कोई जीव नहीं है, मुझसे बड़ा पापी और कोई नहीं है, हे भगवान कब कृपा करोगे ताकि मैं आपका स्मरण नित्य प्रति क्षण कि आपके कृपा की अनुभूति में अपने जीवन में उतार पाऊं। अगर इस प्रकार की अगर नित्य निवेदित प्रार्थना करते हैं तो कृष्ण इतने कृपालु है, इतने कृपालु है कि उसकी अंदाजा तो हमारे दिमाग से परे है। कब और कहां और कैसे करेंगे उनके ऊपर छोड़ दीजिए, लेकिन अपने कर्म करते रहिए। गीता के 6 अध्याय के 1 श्लोक में बताया गया है, योगिनम कर्म कुर्वन्ति, योगी भी कर्म करते हैं लेकिन किस लिए? आत्मशुद्धया, अपनी शुद्धिकरण के लिए। हमें कर्म प्रतिदिन अपने नित्य नैमित जीवन में प्रतिदिन करना है अपनी शुद्धिकरण के लिए। प्रार्थना करें, जप करें, गीता और भागवत का अध्ययन और पठन पाठन करें, किसी संत से कुछ सुनने की जानने की जिज्ञासा रखें। अगर इस प्रकार की हमारी भावना है तो हम इस संसार में भी रहते हुए छूटे हुए, नहीं तो गिरे तो गिरे ही। उठना है तो ये नियम बनाना है। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न हो तो एक प्रश्न लिया जा सकता है। ग्रंथराश्र बोलिए बोलिए। थोड़ा माइक में बोलिए कि सब लोगों को प्रश्न भी समझ में आए और वो भी कुछ करें।
हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जैसे आपने कहा कि भगवान से नित्य प्रति प्रार्थना करनी चाहिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में ऐसा लगता है कि वास्तव में ऐसा होना चाहिए। पता नहीं क्या भौतिक कलमश ऐसा है कि हो नहीं पाता, ऐसे कैसे किया जाए?
देखिए, एक जगह बताया गया है कि भगवान ने मन का स्वभाव ऐसा जान करके बनाया है कि वो कुछ न कुछ उपद्रव वाली कार्य करते रहेगा, लेकिन नहीं लगता है तब भी उस उपद्रवी मन को लगाने के लिए कुछ भगवान के पर कार्य को करना होता है। अगर आपका प्रार्थना पढ़ रहे हैं लेकिन वो प्रार्थना समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अपने नियमित कर्म समझ करके उसको करते जाइए। उस कर्म के अंदर इतनी पवित्रता है, शुद्धता है कि एक दिन वो अपने आपके लक्ष्य को पूरा करा देगा। हम लोगों की कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग 16 वाला जप कर रहे हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं और कहाँ हम गिर जाएंगे, लेकिन भगवान घोषणा करके कहे अर्जुन को कि इतना ध्यान रखना कि हमारा भक्त का पदोचित कभी नहीं होता, कभी गिरता नहीं। इसलिए सावधान रहना कि उसका उपहास और हंसी भी नहीं उड़ाना। इसी पर भगवान बल दे करके कहते हैं वो हंसने लायक नहीं है, मैंने अपने माया को भेजा है कि जो थोड़ा सा भी अगर मेरे से विमुख हो तो उसके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। अगर वो घीर करके भी तुरंत झाड़ झुड़ करके तैयार हो गया कि नहीं पता नहीं मैं अभी ठीक हूँ फिर अपना माला पकड़ूंगा, तो भगवान का ही है। इसलिए प्रयास हमें वही करना, भगवान की माया दुरत्या के आगे, मम माया दुरत्या, भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरी माया असंभव है मेरी माया से छूटना, लेकिन तुरंत उसके बाद वाले श्लोक में कहते हैं कि नहीं, जो भक्त अनन्या भक्ति करता है वह मेरे माया से छूट जाता है। अगर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, तो प्रार्थना में इतनी शक्ति है को प्रत्यक्ष भगवान प्रकट हो जाते हैं। आप सोचिए ना, भिखारी बनकर के सामने आए हुए हैं भगवान, यहाँ किस गुण से रिझ कर गया है? केवल बलि महाराज के त्याग को, आत्मसमर्पण को देख करके भगवान आए, और अपने भक्त के वंशज में आए हुए भक्त की और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वामन देव बलि महाराज के समक्ष प्रकट हुए। हम लोग पीछे वाले अध्यायों को, श्लोकों को अगर पढ़े ध्यान से, तो पता चलता है कि किस लिए भगवान प्रकट हुए। ये सब हम लोगों को पढ़ने की जरूरत है, बस पढ़े, अपने से उत्कृष्ट भक्तों से सुने, तब ये सब चीजें समझ में आती। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, श्रील प्रभुपाद महाराज की।